بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حکومت مختار کا انجام کیا ہوا۔ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے مولانا رضوان علوی صاحب، جو کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ بالآخر بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اتنا عظیم قیام کیا، امام حسین کے خون کا بدلہ ان افراد سے لیا کہ جو کسی بھی معاشرے میں، کوفے میں اور بلاد اسلامی میں بہت حیثیت کے اور اہمیت کے حامل افراد تھے۔ بعض لوگ قبیلوں کے سردار تھے، بعض لوگ جنگجو سپہ سالار فوجوں کے سردار، لیکن ان سب سے انتقام لیا ہے جناب مختار نے۔ اس کے بعد ایک شیعہ حکومت قائم کی ہے کوفے میں۔ آج ہم چاہیں گے کہ آپ اس موضوع پہ روشنی ڈالیں کہ جناب مختار کی اس حکومت کا بالآخر کیا ہوا، کیا انجام ہوا اس حکومت کا، اور اس کے علتیں کیا تھیں، کن اسباب کی وجہ سے، کن علتوں کی وجہ سے وہ حکومت زیادہ دن نہیں چل سکی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر الناصر المعین۔ امیر مختار کا قیام اور ان کی حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ بہت مختصر ہے، 18 یا 19 ماہ امیر مختار نے اس حکومت کو انجام دیا ہے۔ ان 18 یا 19 مہینوں میں امیر مختار نے حد الامکان یہی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو قاتلین امام حسین سے بدلہ لیا جائے، سید الشہداء کے قاتلین سے انتقام لیا جائے، اور جیسا کہ انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اس مختصر سی مدت میں انہوں نے تقریباً 7,000 افراد کو، کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی ذریعے سے معرکہ کربلا سے رہا ہے، لشکر یزید سے ان کا تعلق رہا ہے، ان افراد کو قتل کیا، اور جس بات پر بیعت کی گئی تھی اس بات کو انہوں نے انجام دیا۔ اس مختصر سی حکومت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا دورانیہ بہت کم ہے، جناب مختار نے عدالت کا ہاتھ، عدالت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، مضبوطی سے عدالت،
یعنی حکومت کی بنیاد رکھی عدل و مساوات
پر، اور جتنے بھی امور انہوں نے نمٹائے ہیں وہ عدل و مساوات کی عنوان سے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے امیر المومنین نے عدالت کو قائم کرنا چاہا، اسی عنوان سے جناب امیر مختار نے اس حکومت کو انجام دیا ہے، اور جس طریقے سے امیر المومنین کے دشمن ہو گئے لوگ، اسی عدالت کی وجہ سے، کیونکہ دشمنوں کو یہ عدالت نہیں بھاتی تھی اور دوستوں کو کھلتی تھی، اسی طریقے سے امیر مختار نے جو حکومت کی ہے عدالت کے عنوان سے، دوستوں کو بھی کھلی اور دشمنوں کو تو خیر کھلنا ہی تھا۔ علامہ مقرم نے اس بات کو اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ امیر مختار کی حکومت امیر المومنین کی حکومت کی شباہت رکھتی تھی، یعنی اتنا عدل انہوں نے وہاں قائم کیا ہے اس 18 اور 19 ماہ کی حکومت میں۔ اسی عدالت ہی کی وجہ سے لوگ امیر مختار کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مساوات اس حکومت کا طرہ امتیاز ہے۔ نہ صرف مساوات بلکہ بہت ساری چیزیں ہمیں امیر مختار کی حکومت میں نظر آتی ہیں، کہ جب ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سر اتار کے امیر مختار کے سامنے رکھا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مختار نے ابن زیاد کے گھر والوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی زوجہ کے ساتھ کتنے رحم دلی کا اظہار کیا ہے، اور اس کو کچھ پیسے بھی بھجوائیں۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری طرف، جب ابن زیاد کی باری تھی تو اس وقت اس نے کیا کچھ نہیں کیا دشمنوں کے ساتھ، جبکہ امیر مختار کے بارے میں دیکھیے کہ انہوں نے اپنے دشمن اور دیرینہ دشمن، کہ جو قاتلین امام حسین کا سرغنہ تھا، اس کے ساتھ بھی کس طریقے سے ایک اچھا برتاؤ وہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ तो ये बर्ताव हमें हर जगह नज़र आता है कि मसावात बैतुल माल से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये बैतुल माल तकसीम हो रहा है हर एक की जानिब, इस तकसीम में सब के सब मसावी हैं। वो लोग के जो अजमी थे, वो लोग के जो अरबी थे, वो लोग के जो अशराफ थे, वो लोग के जो अशराफ नहीं थे, सबको एक ही निगाह से देखा जा रहा था उस हुकूमत में। जो ये बात अशराफ को काबिल अशराफ के लिए काबिल तहम्मुल नहीं थी कि वो अपने हम मसावात अपने हम पल्ला किसी अजमी को देखें, उनको बर्दाश्त ही नहीं था, वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि उनके कोई हम पल्ला आ जाए, और वो भी बिलखसूस अजमी के जो कहना चाहिए कि मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले थे। हम देखते हैं कि मुख्तार ने जब बैत का जब कयाम का ऐलान किया है तो मुख्तार के पास कोई जोर जब
यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑन टाइम होगा, ये सवाल कि 17 या 18 महीने यानी एक साल और कुछ महीने, इतने अरसे में तो हुकूमत बन भी नहीं पाती। आजकल तो पार्लियामेंट बनाने में भी 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। तो ऐसे मुख्तार ने कौन से वो टेक्निक्स और कौन सी वो स्ट्रेटेजी अपनाई है, कौन से वो तरीके अपनाए हैं कि एकदम 18 महीने की हुकूमत, भरपूर हुकूमत, और उसके बाद तारीख के सफात पे शब्द भी वो हुकूमत।
जी जी,
यानी 1-2 साल तारीख में अगर कोई आदमी फ़ालियत करता हुआ नज़र आता है, कोई काम अंजाम देता है, तो वो तारीख उसको लिफ्ट नहीं कराती।
जी जी जी,
कहती है नहीं ये इतनी अरसे के लिए इसने ये काम किया है, कोई दवाम नहीं है इसके काम को। लेकिन मुख्तार की वो 1.5 साल 1.25 साल की हुकूमत, उसको तारीख ने सब्त भी किया है, उसके ऊपर तनकीद भी करते नज़र आती है, उसकी मदहोसरा करती नज़र आती है, और एक तारीख में इसने हलचल मचाई है जनाब मुख्तार की हुकूमत ने। क्या ऐसी चीज़ है?
मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया आगाज़ गुफ्तगू में कि जनाब अमीर मुख्तार की हुकूमत किसको देख रही है, फॉलो किसको कर रही है, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत को। यानी जो अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में हुआ है, अब अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में कोई ज़्यादा अरसे नहीं रही, 4 साल का अरसा है, जबकि इससे पहले वाली खिलाफतें आप देखें वो ज़्यादा अरसे हैं, सिवाय खिलाफत उला के बाद वाली खिलाफतें ज़्यादा अरसे रही हैं। लेकिन इस 4 साल के दौरानिए में 3 जंगों के बावजूद अमीरुल मोमिनीन ने क्या काम अंजाम नहीं दिए हैं, खुसूसन मसावात और अदल को आप देखिए, जो हुकूमत का खासा होता है, किसी भी हुकूमत का खासा उसकी मसावात है और उसकी अदालत है।
बिल्कुल,
अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में भी हमें इस 4 साल के दौरानिए में अदालत नज़र आती है, मसावात नज़र आती है, बैतुल माल में झाड़ू देते हुए नज़र आ रहे हैं, सारा माल बांट चुके हैं। यह मसावात, यही बिल्कुल यही नज़रिया या यही फ़िक्र जनाब मुख्तार में आई, और उन्होंने इस फ़िक्र को वहीं से लिया। मंबा असली फ़िक्र का वही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है कि जहाँ से वो इस मंबे को अक्स कर रहे हैं, और इसी के तहत चलते हुए 19 माह की हुकूमत या 18 माह की हुकूमत में इसको उन्होंने दिखाया और करके दिखाया और करके बताया, दुनिया को दिखाया कि देखो अगर कोई हुकूमत काबिले कहना चाहिए कि तकलीद है तो वो अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है। तुम यानी देखिए उस दौरान जो कयाम हुआ, आपने जैसे जिक्र किया कि अब जुबैरियों का कयाम, वो भी इमाम हुसैन का नाम लेकर उठे थे, लेकिन हमें मसावत वहाँ नज़र नहीं आती, हमें अदालत वहाँ नज़र नहीं आती है। उसके यानी उस हुकूमत को अगर आप सामने रखें और उसके बाद उमवी हुकूमत को सामने रखें, उस हुकूमत इन दोनों हुकूमतों के दरमियान एक 18 माह की हुकूमत किस तरीके से चले।
जी बिल्कुल, हुकूमत अलवी को फॉलो कर रही है, ये बहुत ही कम अरसे की हुकूमत एक इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है जिसकी वजह से इसको तारीख में इतनी अहमियत मिली है। इसके अलावा और भी खसूसियात हैं हुकूमत मुख्तार की, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है जनाब मुख्तार की हुकूमत का अंजाम क्या हुआ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना रिजवान अलवी साहब, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, ये एक खसूसियत हो गई कि अलवी हुकूमत को फॉलो किया है, इसलिए सुनहरे हरफों से लिखी गई है ये हुकूमत, क्योंकि इसमें हर तरफ अदल व मसावात नज़र आती है। मुख्तार अपनी हत्तल इम्कान कोशिश ये कर रहे हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत को और उनके तर्ज़ हुकूमत को फॉलो किया जाए और उसके मुताबिक इस हुकूमत को चलाया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये उसकी खसूसियत ना हो हुकूमत की, लेकिन फिर भी क्या ऐसा नहीं कह सकते हम कि इन गरीबों को, इन अजमियों को और इन गुलामों को एक मकाम और मर्तबा देना और अशराफ के बराबर में लाकर बैठाना भी मुख्तार की हुकूमत का एक कारनामा है, अरब के उस बहुत ही कदामत पसंद माहौल में कि जहाँ पर अरब अरब के अलावा किसी और को पसंद नहीं करता।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से अमीर अल-मोमिनीन ने अजमियों को एक मकाम दिया, एक रुतबा दिया, वो अजमी के जो किसी खाते में नहीं आते थे उस ज़माने में, अमीर अल-मोमिनीन आए और उन्होंने अजमियों को एक मकाम व मंजिलत दी और उनसे दोस्ती बढ़ाई और उनको उन तक जो है वो माल वगैरह पहुँचाया, और यानी उनको चाहते थे, वो उनको चाहते थे। अमीर अल-मोमिनीन अजमियों को चाहते थे और अजमी अमीर अल-मोमिनीन से मोहब्बत किया करते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने, जनाब मैसम तम्मार की मिसाल है, वो अजमी है। बहरहाल यही तरीक़ेकार अमीर मुख्तार की हुकूमत में नज़र आता है, क्योंकि अमीर मुख्तार ने जिस बात पर बैत ली है उसमें चौथी जो चौथे शिख है इस बैत की, उस उन लफ्ज़ों की, वो क्या है कि ज़ुआफ़ा की हिमायत। और उस माशरे में ज़ुआफ़ा यही अजमी हुआ करते थे
जी
कि
बिल्कुल
जिनकी जो है वो कहना चाहिए कि कोई हैसियत नहीं थी, गुलामों सी की हैसियत थी, और जो लोग आज़ाद हो चुके थे बहरहाल उनका रख रखाव उनके साथ दुरुस्त नहीं था। जनाब मुख्तार ने आकर अजमियों को एक मकाम दिया,
हैसियत दी,
एक
एक मकाम
हैसियत
दिया।
दी, और इसी वजह से असबाब कायाम मुख्तार को ख़त्म करने के असबाब में से एक सबब यही है, इसी वजह से, क्योंकि आपने अजमियों को फौकियत दी, अजमियों को सराहा, इसी वजह से हम देखते हैं कि अरब का वो कदामत पसंद माशरा, वो अशराफजादे के जिनका ताल्लुक कत्ले हुसैन में है, जो मुलविस हैं, मुजरिम हैं इस चीज़ के, लेकिन उसके बावजूद कूफे के अंदर जनाब अमीर मुख्तार के ख़िलाफ़ इस बात का प्रोपोगंडा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे शबस बिन रबी है, एक भयानक किरदार है इसका करबला के अंदर, दुश्मन अहले बैत है, मुख्तार की हिट लिस्ट में है, लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ कूफे में बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि अशराफ ज़्यादा है, मशाइख कूफा में से है, बैठा हुआ है और मुख्तार की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये क्या, इसने ये काम अंजाम दिया है, मुख्तार ने क्या काम अंजाम दिया है, अजमियों को अरबों के ऊपर लाकर मुसल्लत कर दिया है, हमारा माल इसको तकसीम कर रहा है, इनको तकसीम कर रहा है जिनकी कोई हैसियत ना थी।
जी बिल्कुल
तो यही 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 वो कहना चाहिए कि नुकात हैं कि जो यही वो असबाब हैं कि जो अमीर मुख्तार की हुकूमत की तनज़ुली का सबब बने हैं।
यानी जो जनाब मुख्तार की हुकूमत की खसूसियात हैं,
जी,
जो खूबियां हैं, वही खामियां बनी
खामियां
जनाब
बन गई
मुख्तार की हुकूमत के जवाल
और
के और
दुश्मन
उसको।
ने इन खूबियों को, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अदालत, मसावत, मसावात और बराबरी, काले को गोरे पे कोई फोकियत नहीं है, अरबी को अजमी पे कोई फोकियत नहीं, सब मसावी हैं, मसावी हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको कबूल किया जाएगा, जो बुरा काम करेगा उसको उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। एक खुदाई कानून है, एक इस्लामी कानून है, कुरानी कानून है, खुदा के नज़दीक भी वही काबिल कबूल है जो ईमान और तकवा से जो है वो के जेवर से जो है आरास्ता है।
रास्ता होगा बिल्कुल।
ठीक है, इसी को जनाब मुख्तार ने अपना मंशूर बनाया था, यही मंशूर उस माशरे में, कूफे के उस माशरे में दुश्मनान अमीर मुख्तार और दोस्तों के दरमियान भी एक जुर्म हिसाब हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये मुजरिम है, इसने ये काम अंजाम दिया है, जिसकी वजह से अमीर मुख्तार की फ़ौज में भी भूचाल बरपा हुआ हम देखते हैं, और जो कूफे के माशरे में भी अमीर मुख्तार के ख़िलाफ़ नफ़रत के जो पहलू हमें नज़र आते हैं वो नुक्ता यही था।
और आखिर में उनके साथ भी चंद अफराद रह गए कि जो तौहीद की बालादस्ती चाहते थे,
जी,
जो मुख्तार के इन हुक्म और मुख्तार
मुख्तार
का
के
जो प्लान
पैरोकार थे।
था
जी जी
उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे।
जी
यहाँ पर अगर हम इसका खुलासा करें तो मुख्तार का जुर्म बस इतना था कि मुख्तार ने तौहीद की बालादस्ती कायम करने की कोशिश की, और मुख्तार इस चीज़ के खाहां थे कि उस अरब माशरे में अदालत अलवी राइज हो, जो बशरियत की बका की खातिर था मगर बशरियत खुद उसको समझने से कासिर थी। यहाँ पर हम चंद सवालात को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और एसएमएस एड्रेस मौजूद है, अपने सवालात हमें लिख के भेजें ताकि हम उलमा और दानिश्वर हजरात से उसके जवाबात ले सकें। मौलाना, एक सवाल हमें ईमेल के ज़रिए मौसूल हुआ है कि आपके प्रोग्राम में मसले जबर को कई दफ़ा दोहराया गया है और कई दफ़ा इस चीज़ पर ताकीद की गई है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलावा जो भी हुक्मरान थे वो मसले जबर के कायल थे, ये मसले जबर आखिर क्या चीज़ है?
मसला जबर उमवी हुकूमत का आमादा करदा एक मसला था। मसला जबर क्या मसल, अमीर शाम ने कि जब अमीर शाम हुकूमत बैठ गया, तख्त पर बैठा, तो लोगों के दरमियान ये प्रोपेगंडा कराया कि भाई देखो कोई भी पत्ता पत्ता जो है इस जहाँ में पत्ता पत्ता हुक्म खुदा से के बगैर हरकत नहीं कर सकता, ज़र्रा ज़र्रा हुक्म खुदा के बगैर हरकत नहीं कर सकता, जो कुछ भी ये हुक्म खुदा है। अब जब मैं ये हुकूमत पे बैठा हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ ये हुक्म खुदा है और तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा, ये इस तरीके से इस नज़रिए को सामने लाया गया। और फिर ये नज़रिया पलते पलते या पनपते पनपते देखिए एक बहुत बड़ा अकीदा बन गया पूरे एक ग्रोह का कि जो इस बात के कायल हो गए कि जनाब अली हर चीज़ हुक्म खुदा से है। असल फ़ायदा इस नज़रिए का किसको हो रहा था? हुकुमा हाकिमाने वक्त को, क्योंकि वो तख्त पे बैठते ये कहते थे कि जो कुछ है खुदा की जानिब से है, अब जो मैं कर रहा हूँ वो खुदा की जानिब से है। इसलिए उमवियों ने खलीफा को हाकिम वक्त को खलीफतुल्ला कहना शुरू कर दिया था। इसी वजह से खलीफतुल्ला कहा कि भाई ये अल्लाह के खलीफा हैं, जो कुछ भी करें इनकी मर्ज़ी, अब ये कुरान पर तीरंदाजी करें इनकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, अब ये कुरान को फाड़ दें इनकी मर्ज़ी, जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म से हुआ है, किसी को कत्ल करना है इमाम हुसैन को कत्ल करना है, असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है, ये सब कुछ क्या है हुक्म खुदा से हो रहा है। तो ये था नज़रिया जबर, जबकि ऐसा हमें ये अकली कायदे के मुताबिक नहीं है, कुरानी कहना चाहिए अकायद के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि जो कुछ कर रहा है खुदा कर रहा है, जब खुदा ही सब कुछ कर रहा है तो फिर गुनाह और सवाब और अज़ाब और जज़ा ये सब क्या चीज़ें हैं कि जिससे कुरान जो है वो भरा पड़ा हुआ है, अहादीस भरी 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 हुई हैं कि जहाँ ये बयान हो रहा है कि अच्छे काम करोगे तो तुम्हें हसना मिलेंगे,
जी बिल्कुल,
यानी जर्रे जर्रे को वो देख रहा है, जर्रे
बहिश की
जर्रे
बात कर रहा है, बहिश की
बहिश्त की
खूबियां
बात
बयान
कर रहा
कर
है,
रहा है,
खूबियाँ
जहन्नुम
बयान,
की बात कर रहा है,
ये
जहन्नुम की
भाई
खामियां खराबियां बयान कर रहा है, उसकी आग का जिक्र इतनी जगह कर रहा है, और उसके बाद अच्छे बुरे इंसानों में तमीज़ पैदा
तमीज़
कर रहा है
पैदा कर,
कुरान
जी
में,
जी जी
और अच्छी बुरी ख़वातीन का जिक्र कर रहा है
हर जगह
कि
से, जी जी
मोमिन लोगों के लिए मोमिन
जी जी
औरतें हैं और बदकिरदार मर्दों के लिए बदकिरदार औरतें हैं,
जी
इस
जी
तरह करके उनकी तफरीक भी कर रहा है कुरान।
सब कुछ
तो
है, जी
अगर
जी
जब ये सारी चीज़ें कर रहा है और
तो फिर
उसके
जब
बाद फिर खुदा अगर ये सारे काम भी अंजाम दे रहा है खुद, तो मेरे ख्याल में हमारी भी नाकिस अक्ल इस चीज़ को तस्लीम
कबूल
नहीं
नहीं
करती
करती, जी
कि कोई इंसान दुनिया में इस नज़रिए के तहत अच्छा है और दूसरा इंसान बुरा है, कोई इंसान तकवे में अफजल है और दूसरा बुराइयों में बहुत आगे है। यहाँ पर हमारे वक्त का अख्तिताम हुआ चाहता है। मौलाना, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।